السلام علیکم خواتین حضرات، ہم سب اس ملک کی مخصوص آب و ہوا کی وجہ سے بارش کو بہت پسند کرتے ہیں، اور اس کو انجوائے کرتے ہیں ہر ہر طریقے سے. لیکن اگر کبھی ہم اس پہ غور کریں کہ بارش برس رہی ہے، اس کا کوئی تعلق انسان کی زندگی سے ہے، کوئی مماثلت موجود ہے انسان سے، تو جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ایک عجیب چیز سامنے آتی ہے. یہ جو بارش ہے یہ ایک سائیکل ہے مسلسل. بادل ہیں جو فضاؤں میں ہوا کے دوش پر اڑتے پھرتے ہیں، ہوا انہیں اڑا اڑا پھرتی ہے، بلندی ہے انہیں، اور اتنے لطیف ہیں کہ ہوا کے دوش پہ آرام سے تیرتے رہتے ہیں. ہے وہ پانی سب کا سب. جب برستے ہیں تو وہی بادل وہی پانی جو اتنی بلندی پر ہوا کے دوش پر اڑتا پھرتا ہے وہ زمین پہ آن گرتا ہے. تو اس بلندی کو پستی نصیب ہوتی ہے. لیکن وہ پانی پستی میں رہتا نہیں. سورج کی تپش اس پانی کو پھر بخارات میں تبدیل کرتی ہے، اور وہ بخارات بن کے پھر بلندی کی طرف چلا جاتا ہے، اور وہاں جا کے وہ بادل کی شکل اختیار کر کے پھر ہواؤں پہ اڑتا پھرتا ہے. انسان زمین پر آنے سے پہلے عالم ارواح میں ہوتا ہے جو بلندی پر ہے، آسمانوں پر ہے. تو اس کی روح اس بلندی سے زمین پر آتی ہے، پستی کی طرف آتی ہے. اب یہاں آ کے اختیار اس کا اپنا ہے کہ وہ عیش کے دن گزار لے اور یہیں کا یہیں رہ جائے، اسی پستی کا شکار ہو جائے، یا اپنے آپ کو رب تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام اور احکامات کے مطابق ڈھال لے اور وہ بلندی حاصل کر لے جو فرشتوں کو بھی نصیب نہیں، فرشتوں سے بلندتر ہو جائے وہ. تو جس طرح پانی پستی پر آنے کے بعد پھر تپش کے ذریعے سے بخارات میں تبدیل ہوتا ہے، تپتا ہے، تو اسی طرح انسان اگر اس دنیا میں آرام و آسائش اپنے لیے چننے کی بجائے مجاہدے سے گزرے، کیونکہ شریعت پر عمل باقاعدہ ایک مجاہدہ ہے، تو وہ مجاہدے کی آنچ اسے پھر بلندی کی طرف لے جائے گی. تو انسانی زندگی اور بارش میں بڑی گہری مماثلت ہے. मुझ जैसे कम फहम लोग ये समझते हैं कि ये जो हम यहां मुश्किलात का शिकार होते हैं, या हम चक्की में पिसते हैं, हम लोगों को ये ख्याल होता है कि शायद मेरी पकड़ हो गई, मेरी आजमाइश हो गई, हम ये भूल जाते हैं। इसकी एक मिसाल मौलाना रूम ने बड़ी खूबसूरत दी थी कि चने भूनने वाली भट्टी पे बैठी चने भून रही थी, तो उसने चने सख्त गर्म रेत में डाले, तो जब उन चनों को तपिश मिली तो उन चनों ने भट्टी वाली से कहा कि तुम हमें आग में क्यों डाले हुए हो, हमें क्यों तपिश दे रही हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, क्या कसूर किया जो हमें तुमने आग में डाल दिया। तो चने भुनने वाली ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें सजा नहीं दे रही, बल्कि तुम्हें इस तपिश में डाल के पहले से ज्यादा लजीज बना रही हूं। जैसे एक उस्ताद अपने शागिर्द को जब सजा देता है तो उस्ताद का मकसद ये नहीं होता कि वो अपने शागिर्द को कोई नुकसान पहुंचाए, कोई ईजा पहुंचाए, बल्कि उसका मकसद ये होता है कि उसकी खामियों को वो निकाल बाहर करे किस तरह, ताकि मेरा शागिर्द एक अच्छा और काबिल इंसान बन जाए। ये जो हम दुनिया में मुश्किलात का शिकार होते हैं, हम सख्तियों को झेलते हैं, हालात के जबर को बर्दाश्त करते हैं, तो दर हकीकत ये आजमाइश नहीं होती हमारी, बल्कि रब ताला हमें उस भट्टी में से गुजारते हुए चने की तरह, जैसे भट्टी में डलने के बाद कच्चा चना भुनकर लजीज हो जाता है, तो हमें वो अच्छा बनाता है। ये असल में उसका प्यार है कि हमें उस भट्टी से गुजारता है वो, कि हम ये धोबी के पास आप सफेद कपड़ा भेजते हैं तो उन सफेद कपड़ों को भट्टी चढ़ा देता है, रंगीन को नहीं चढ़ाएगा कभी, ताकि वो पहले की तरह सफेद हो जाए, उसका मैल पूरी तरह निकल जाए, दाग धब्बे दूर हो जाए। तो इंसान उस भट्टी में डाला जाता है कि उसके अंदर की तमाम आलाइशें निकल जाएं और वो एक बेहतर इंसान हो जाए। अगर ये बात न होती तो हम जरा सा भी अगर गौर कर लें तो पैगंबरों को ये जिंदगी अता न होती इस तरह की। कोई पैगंबर ऐसा नहीं जो मुश्किलात में ना जिंदा रहा हो। तो अगर ये कोई बुरी चीज होती तो अल्लाह ताला अपने पसंदीदा बंदों को और अपने महबूब बंदों को ये जिंदगी अता न करता है थी मुश्किलात वाली, इसलिए कि रब के लिए क्या दुश्वार है कि किसी भी इंसान को वो आला तरीन पुरासाइश जिंदगी अता फरमा दे, उसके लिए तो कोई दुश्वार नहीं है। उसे तो सिर्फ एक ख्याल ही उसका करना है, उसके सोचना है और वो हो जाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ताला के इंतहाई महबूब, ऐसे महबूब कि जिनकी मोहब्बत में दुनिया ये कायनात तख्लीक हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाकायदा एक ऑप्शन मौजूद थी कि पुरासाइश जिंदगी गुजार लें या एक सख्त जिंदगी गुजारें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑप्ट किया ऐसी जिंदगी को जिसमें बड़ी सख्ती थी। तो मेरे नजदीक तो ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा सबूत है इस बात का कि ये जिंदगी ज्यादा बेहतर है बनिस्बत उस जिंदगी के जिसमें, हालांकि जो नेमतें और जो माली वसाइल, मादी वसाइल हासिल हैं वो भी रबी की अता करना है। लेकिन उन मादी वसाइल को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हम सिर्फ एक सूरत में कर पाते हैं, अगर हम ये समझने लगें कि ये रब ही के अता करना है, ये मेरे नहीं है। क्योंकि ये कहना कि ये मेरा है, यही दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। अगर ये सब मेरा हो तो फिर ये मेरे साथ जाए, फिर यहां न रह जाए। ये सबसे बड़ा झूठ यही है कि ये मेरा है, नहीं, ये रब का अता करदा है और इस पर मेरा उतना हक है जिससे मेरी जायज जरूरियात पूरी हो जाती हैं। इसी ज़िम्न में एक बात मैं ये अर्ज किया करता हूं, मेरे नजदीक इंसान जो दुनिया में आया है, अगर जिंदगी गुजारने का ढंग एक जुमले में कहना हो, एक फिक्रे में कहना हो, तो शायद मैं उसको इस तरह से अदा कर दूंगा कि इंसान इबादत करे अपने रब के लिए और जिंदा रहे दूसरों के लिए। मेरे नजदीक शायद वही बेहतरीन जिंदगी। ये किसी साहब ने सवाल भेजा है इस्लामाबाद से, मेरे नजदीक आप हमेशा मियां बीवी की शदीद अनबन और गैर मुताबिकत की सूरत में भी शादी को चलाने ही की बात करते हैं, भला एक फरीक इंतहाई ज्यादती करता हो और बेइंतहा किस्म की गैर अखलाकी इल्लतों में ही क्यों ना मुब्तला हो, आपका दुआ के दौरान पूछने पर भी शादी को चलाने का यही मशवरा होता है, क्या इसकी वजह से हमें एक ऐसे काम से बहरहाल दूर रखना है जो रब के नजदीक नहायत पसंदीदा है, या आपको दुआ में बेहतरी और कुछ उम्मीद दिखाई देती है और इसकी वजह से आप शादी को चलाने की बात करते हैं? देखिए, आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही अपने सवाल ही में दे दिया, जिस चीज से रब ताला कराहत का इजहार करे, नापसंदीदगी का इजहार करे, उसको कोई इंसान किस तरह पसंदीदा करार दे दे। तो अल्लाह ने तो यही हुक्म दिया कि आखिरी हद तक शादी को बचाने की चलाने की कोशिश करें। तो उसके किसी बंदे से आप पूछेंगे तो रब ही के अहकाम के तहत बात करेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को हुक्म दिया कि अपनी बीवियों के साथ नेक सलूक किया जाए। ये जो आपके सवाल का एक हिस्सा है कि आपकी बेगम, किसी भी इंसान की बेगम साहिबा, खा इंतहाई ज्यादती करे, बे इंतहा किस्म के गैर अखलाकी इल्लतों ही में क्यों ना मुब्तला हो जाए, इसमें शायद हर आदमी मुझसे इख्तलाफ करेगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि रोज़े कयामत हम में से हर शख्स ने अपना अपना हिसाब देना है। हम में से हर शख्स अपने ही अमाल के लिए रब ताला के हुजूर जवाबदेह होगा रोज़े महशर यौम हिसाब। और इस दुनिया में भी, ये मेरे तजर्बे की बात है इसलिए आखिर पर मैंने कहा कि इस दुनिया में भी। अगर किसी साहब की बेगम साहबा उनके साथ इंतहाई ज्यादती कर रही हैं और वो उस ज्यादती के जवाब में हुस्न सलूक ही करता है, बंदा अपने हकूक अदा करता है 100% नहीं बल्कि उससे कहीं आगे जाके, तो क्या सिर्फ यही शुक्र करने के लिए काफी नहीं कि मैं रोजे हिसाब रब ताला के हजूर जो आप दही से बच जाऊंगा इस मामले में, कि मुझे ये जवाब नहीं देना पड़ेगा कि ठीक है तुम्हारी बेगम तो जो कुछ करती थी वो करती थी, वो तो पूछ लिया जाएगा उससे, लेकिन तुम्हारे जिम्मे जो हकूक थे उसके, तुमने वो पूरे क्यों नहीं किए, तो उसका जवाब तो मुझे देना होगा। तो अगर कोई शख्स अपनी बीवी के हकूक 100% से आगे जाकर अदा करता है, वो एहसान के जिम्मे में चला जाता है, इतने हकूक अदा करता है कि वह एहसान के दर्जे तक चला जाता है कि उस एहसान का सलूक करने लगता है, तो न सिर्फ ये कि जवाबदेही से बच गया बल्कि इनामात का हकदार हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे सामने है कि बेगम ही क्या, किसी भी शख्स की ज्यादती का जवाब ज्यादती से नहीं दिया है। हम दावा ये करते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह प्यार करते हैं, तो उस प्यार का तकाजा तो यह है कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर लिया जाए। क्या हमारे सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी अजवाज मुतहरात के साथ सलूक नहीं हमारे सामने? तो मैं तो वो बात कहता हूं जो सुन्नत है कि अपनी बीवियों के साथ उनकी तमाम तर ज्यादतियों, कोताहियों और तुंद बयानी इन सब चीजों के बावजूद हुस्ने सलूक कर लिया जाए तो उसका अजर दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी मिल जाएगा। सवाल साहब ने पूछा है कि 7 का अदद और 11 का अदद, इस पर रोशनी डाली जाए क्योंकि कुरान पाक में मुतअद्दिद बार इन अदाद का जिक्र है। मुसलमान इन किस्सों में नहीं पड़ता है कि कौन सा आदत मेरे लिए साध है और कौन सा मनहूस है। अगर इस आदत के तहत मैं काम करूंगा तो वो काम कैसे रहेंगे। मुसलमान का तो तमाम तर भरोसा अपने रब पर है। लेकिन चूंकि आपने एक सवाल पूछ लिया तो मैं बतौर इल्म के तुम्हें अर्ज कर देता हूं आपसे, लेकिन इनके साथ होने पर, इनके इंसानी जिंदगी पर असरअंदाज होने पर ईमान नहीं है मेरा। रब जब चाहे किसी भी चीज के असरात को बदल के रख दे, एक सेकंड के हजारवें हिस्से का भी काम नहीं उसके लिए वो। ये सात का अदद आमतौर पर रूहानियत का अदद कहलाता है, और वो रूहानियत का अदद इसलिए कहलाता है कि ये तामीर का अदद है। और जैसे सात आसमान हैं, जमीन की सात तहें हैं, रोशनी के सात रंग हैं, तो ये इसको रूहानियत से मुतालिक कहा जाता है कि रूहानियत का नंबर है सात। और 11 का अदद रब का अदद माना जाता है कि अल्लाह के अगर एदाद न्यूमरोलॉजी के तहत वर्कआउट किए जाएं तो 11 बनेंगे। और इसीलिए 11 के अदद को न्यूमरोलॉजी में 1+1 के 2 सिंगल डिजिट में नहीं लाया जाता, ये 11 ही की सूरत में रहता है, इसको तोड़ा नहीं जाता कभी। और इसके बारे में एक चीज ये है कि जब हम 11 लिखते हैं तो 2 लाइनें मतवाजी लाइनें हम डालते हैं, तो ये हम सबको ज्योमेट्री का असूल मालूम है कि जो पैरेलल लाइंस हैं वो इन्फिनिटी कहलाती हैं, वो कहीं मिलती नहीं आपस में, इन्फिनिटी होती है। और रब ताला इन्फिनिटी है, लामतनाही है वो। और हजरत अली करमल्ला वजह के इसमें मुबारक के नाम भी 11 ही बनते हैं, हरूफ 11 ही बनते हैं। तो इनके पीछे ये, लेकिन इनको सिर्फ इल्म की हद तक तो सोचिए, लेकिन भरोसा रब पे कीजिए, ऐदाद पर भरोसा ना कीजिए। और यहां किसी वक्त शायद एक मैंने अर्ज की थी कि जिस तरह बाइबल पर और तोरा पर बड़ी रिसर्च हुई कि उन किताबों की, उन इल्हामी किताबों की तहरीर किस हरफ पर बैलेंस की गई है, बहुत से ज्यूज ने उस पर किताबें लिखी, गालबन 3 किताबें तो मेरी नजर से गुजरी। इसे बाइबल पर बहुत ज्यादा किताबें लिखी गई, तो उनकी देखा देखी कुछ लोगों ने रिसर्च की कुरान पाक पर भी। तो एक साहब अपनी लिखी हुई किताब मेरे पास लेके आए और उन्होंने कहा साहब कुरान पाक जो है वो इस हिंसे पर है, तो आप किसी आयत का टोटल कर लीजिए, किसी सूरा का टोटल कर लें, सब वही हरफ बनेगा, नंबर बनेगा उसका। तो मैंने उनसे कहा कि चलिए एक मेहरबानी और कर लीजिए, मेरे कहने से आप 1 का अदद लेके उस पर कर लीजिए, जब वो मुकम्मल कर लें आप तो मुझे बताइएगा कि ये कुरान पाक क्या उसी पर बुनियाद नहीं उसकी, और जब वो कर चुके हैं तो फिर 2 पर कर लीजिएगा, 3 पे कर लें, 4 पे कर लें। तो 1 से 9 तक जितने नंबर हैं उन पर तहकीक कीजिए तो आपको हर नंबर यही लगेगा कि इसी पर कुरान पाक की बुनियाद है। इसलिए एक वो इलाहमी किताब है, रब का कलाम है, वो उसको आप किसी जाविये से भी देखेंगे वो मुकम्मल ही दिखाई देगी। इंसानी जहन उसकी गहराइयों तक नहीं पहुंच सकता। हम तो उसके छुपे हुए मायनों को नहीं देख पाते। भाई ये ऐसे सवाल जो मेरे बस के नहीं, मेरी इस्तादाद और सतह से कहीं बुलंद हैं, वो मुझसे पूछेंगे तो मैं उससे पहलू तही करने की कोशिश करूंगा। ये वैसे ही फिर एक सवाल पूछ लिया, ये आपको कोई ऐसे साहब ऐसे सवालों का जवाब दे पाएंगे जो उस तजर्बे से गुजरे हुए हों। मेरे बस के तो ये नहीं है, मैं तो इसके हरूफ अब्जद से भी वाकिफ नहीं हूं। ये सवाल जो आपने पूछा इसका जवाब मैं क्या दे पाऊंगा, मेरा वास्ता इन चीजों से कभी पड़ता ही नहीं है जिंदगी में। सवाल किसी ने पूछा है कि किसी जगह पढ़ा था कि एक मुरीद सच्चे मुर्शद की तलाश में होता है और इसी तरह एक मुर्शद सच्चे मुरीद की तलाश में भी होता है, इन अल्फाज पे कुछ रोशनी डाल दीजिए। भाई पहले तो एक काम कर लें कि मुझे कोई एक सच्चा मुर्शद बता दीजिए कि वो वहां है तो मैं जाके उनको देख लूं, और फिर कोई मुरीद भी ढूंढ दीजिए। मैं तो बड़ा तलाश में रहता हूं कि कोई मुरीद मुझे मिले जो मुझे उठकर सलाम तो कर लिया करे। तो ये राह मेरे बस की नहीं है, ये तो इल्म वाले लोग आपको बता पाएंगे। मैं तो एक बात जानता हूं कि जो उस मकाम पर आया कि वो मुर्शद बन जाने का अहल हो जाए, बहुत बड़ा मकाम है वो, तो वहां तो बाकी सब तलाश खत्म हो जाती है, सिर्फ एक तलाश बाकी रहती है कि मेरा दोस्त मुझे कब मिलेगा। वो अपने दोस्त की तलाश में रहता है और उसका दोस्त रब है। तो जो मुर्शद है, सच्चा मुर्शद है, उस मकाम तक आया है, तो वो तो मुरीद की क्यों तलाश करेगा? अगर मुरीद की तलाश करता है तो वो मुर्शद नहीं है। फिर उस मकाम पर पहुंचने के लिए तो फनाफी अल्लाह होना पड़ेगा उसे, तो फनाफी अल्लाह हो जाने के बाद इंसान की तलाश बाकी ही नहीं रहती। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं, और यकीन तौर पर यह गलत ख्याल होगा मेरा, क्योंकि मेरी ये राय ही नहीं है, ये तो इल्म वाले बताते हैं सही है। हाँ, सच्चा मुरीद जरूर मुर्शद की तलाश में रहता है, इसलिए कि वो सीकर है, वो मुतलाशी है, उसको इल्म चाहिए, और इल्म उसे मिलेगा किसी सच्चे साहिब इल्म से। साहिब इल्म के अलावा उसे कोई वो इल्म दे नहीं सकता जिसकी तलाश है उसे। तो मुरीद तो सच्चे मुर्शिद की तलाश में हो सकता है, वो लॉजिक समझ में आती है मेरे, क्योंकि वो इल्म की पहली सीढ़ी पर पांव रखेगा तो रफ्ता रफ्ता ऊपर चढ़ेगा, फिर उस मकाम पर चला जाएगा कि जहां वो रब के तलाश में शुरू हो जाए कि मैं रब को ढूंढूं। जब वो रब की तलाश में निकलेगा तो वो इंसानों से बेगाना हो जाएगा। मैं इससे ज्यादा इस पर कुछ नहीं अर्ज कर सकता। इनका अगला सवाल फिर वही उसी जगह ले गए, भाई कोई साहिब इल्म में ऐसी बातें कर सकता है, मैं नहीं। कि ख्याल, इल्हाम, कश्फ, इन सब कैफियात में इंसान फर्क कैसे कर पाता है, उसको कैसे अदराक होता है कि ये ख्याल है, इल्हाम है या कश्फ है। भाई बड़ी सामने की बात है, मेरे सामने अगर किसी ने लकड़ी रखी है, ईंट रखी है, लोहे का एक पीस रखा है, तो मैं उन तीनों में कंफ्यूज नहीं कर सकता कि ये इनमें से लोहा, ईंट या लकड़ी ये कौन सी है, वहां कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं क्लियरली उसको देख पाऊंगा कि ये लकड़ी है, ये मिट्टी है और ये लोहा है। तो ख्याल कि अपनी एक डेफिनेशन है, वो इंसान को पता है कि ये ख्याल पैदा हुआ मेरे दिल में, इसलिए कि वो कहीं उलझा, किसी चीज पर गौर करना शुरू किया उसने, तो उसके दिल में एक ख्याल पैदा हुआ कि शायद ये ऐसा है, ये ख्याल है। इसमें आप एक चीज भूल गए कि ख्याल के बाद रोया का मकाम आता है, कि वहां इंसान ख्वाब में देखने लगता है चीजें, और वो आमतौर पर सुबह फजर की नमाज से फौरन पहले या फजर की नमाज पढ़ के अगर इंसान सोया तो जब कोई चीज देखेगा वो, तो वो सच्चा होता है ख्वाब, वो रोया कहलाता है। तो जो चीजें आदमी आलम रोया में देखता है उसको रोया के नाम से हम जानते हैं। अलका उसके बाद आता है, इल्हाम उसके बाद आता है। इंसान किसी मसले में उलझा हुआ है तो उसका सोल्यूशन रब ताला उसे अता कर देगा, दे देगा, वो इल्हाम है। वो गुमान नहीं पैदा होता, शायद वाली बात नहीं होती, वहां एक यकीनी बात होती है। और कश्फ, वहां तो बिल्कुल ही कोई धोखा नहीं खा सकता कि वो बिल्कुल इसी तरह इंसान चीजों को देख रहा होता है जैसे खुली आंखों से हम देखते हैं। तो ये कैफियत सारी की सारी अपनी अपनी एक अलहदा हैसियत लिए हुए हैं, वहां कन्फ्यूजन नहीं हो पाएगा कभी। तो जब आप अल्लाह ताला आप पे वो रहमतें नाजिल फरमाएगा कि आपको इन मकामात से गुजारे, तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। खुद इंसान को पता चल जाता है कि ये ख्याल पैदा हुआ मेरे दिल में, ये मैंने ख्वाब देखा है, ये सच्चा है या गलत है, ये इल्हाम हुआ और ये कश्फ है। इसलिए वो तो फिल्म की तरह देख रहा होता है इंसान, जैसे टीवी देखते हैं आप। किसी और साहब का सवाल है। जैसा कि बड़े शाह साहब ने आपको फरमाया था कि मुझे आपका चेहरा बहुत पहले दिखा दिया गया था, आपने मेरे पास आने में देर कर दी, मेरे पास जितना तुम्हारा हिस्सा था वो तुम्हें दे दिया, तो क्या हर मुर्शिद को अपने मुरीद का चेहरा इसी तरह दिखा दिया जाता है? वो इसी तरह अपने मुरीद को इस हिस्से को, भाई पहले मुझे मुर्शिद बना दें, मेरा भी भला हो जाएगा, तो आपको भी सवालों के जवाब दे दूंगा मैं। अगर देखिए, एक रूहानियत के राह पर और इल्म की राह पर एक मैं अर्ज कर दूं, राउंड अबाउट वे में क्वेश्चन नहीं किया जाता। आप डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसका एक क्लियर कट जवाब मिलेगा जिससे इंसान का इत्मीनान हो जाता है। जब अपने सवाल को, अपने ख्वाहिश को हम इल्मी सवाल का की शक्ल देकर पूछते हैं तो जिससे सवाल पूछा गया है वो उसको इल्म के जिम्मे में लेके इल्मी जवाब अता कर देता है, वो इल्मी जवाब होता है। उससे आपकी तस्कीन नहीं होगी क्योंकि जानना कुछ और चाहते हैं आप। तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए ताकि वो डायरेक्ट जवाब आए, उससे आपकी तसल्ली हो जाएगी। ये मुझे सवाल बुरा नहीं लगा कतई तौर पर, मैं तो सिर्फ आपका भला चाहता हूं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए ताकि एकदम से पता चल जाए। जिन साहिबान ने मुर्शद की जगह लेनी होती है उनके दुनिया से चले जाने के बाद, आमतौर पर उन्हीं का चेहरा मुर्शद के सामने आता है। ये सवाल का जवाब है आपके। अब इससे आपकी तसल्ली नहीं होगी, पूछना कुछ और आप चाहते हैं। देखिए, किसी का चेहरा दिखाया गया हो या न दिखाया हो किसी भी साहिबे इल्म को, जिस तरह मैं दुआ के लिए एक अर्ज करता हूं कि जब हम किसी से दुआ के लिए कह देते हैं वो मजबूर है कि वो आपके लिए दुआ कर दे, इसलिए कि अगर वो दुआ नहीं करेगा तो रब की नजर में कंजूस कहलाएगा, बखील कहलाएगा, और बखील पर रब की लानत है। तो कोई शख्स अपने आप को बखील कहलाना पसंद नहीं करता, वो पाबंद है आप पर, दुआ आपकी दुआ फौरन कर देगा। इसी तरह जो साहिब इल्म है, रब ने उसको इल्म अता किया है, वो उसका अपना जाती नहीं है, उसकी मलकियत नहीं है। उसके पास जो इस नियत से आएगा कि उससे इल्म ले, वो उसको कश्फ के जरिए परख लेगा, तोल लेगा। तो इल्म देने में जो चीजें रुकावट बन रही होंगी, जो आदत रुकावट बन रही होंगी, वो उसको एडवाइस कर देगा कि पहले आप इन चीजों पर काबू पा लीजिए। जैसे एक ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, मुझे बड़ी बुरी आदत है कि मैं गीबत करता रहता हूं बैठा। तो जब मैं अपने मुर्शद साहब के पास या साहिब इल्म के पास जाऊंगा तो वो जब मुझे कुछ देने के लिए तैयार होंगे तो मुझे पहले इल्म से तोल लेंगे और मुझे कहेंगे कि भाई एक काम कर लो, लोगों पर कमेंट न किया करो। अब ये तो नहीं कहेंगे कि गीबत न किया करो क्योंकि दिल नहीं तोड़ेंगे कभी मेरा, लेकिन वो बड़े मुनासिब लफ्जों में कह देंगे कि लोगों के बारे में कमेंट न किया कीजिए। अगर गुस्सा आता है, गुस्से में मैं बरस पड़ता हूं लोगों पर, तो वो फरमा देंगे कि ये गुस्से पर काबू पा लीजिए, सुन्नत नहीं है, सुन्नत यह है कि गुस्से को पी जाया जाए। अब वो मुझे नहीं पता चलेगा कि दर हकीकत वो मुझे तैयार कर रहे हैं इल्म अता करने के लिए। तो वो साहिबे नजर हैं, उनको मेरी असलियत नजर आ गई कि मैं कंजूस हूं, जो कि हूं मैं, तो फौरन मुझसे कह देंगे कि कंजूस रब के करीब नहीं हो सकता कभी। सखावत सुन्नत रब भी है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, तो आप उस सुन्नत पे अमल क्या कीजिए। वो यूं कह के मुझे उस राह पे लगाएंगे। तो जब वो ग्राउंड तैयार हो जाएगी, वो मेरी अपनी हिम्मत है कि मैं कितनी जल्दी उन आदात पर काबू पा लूंगा। तो जब वो ये महसूस करेंगे कि मैंने इन आदात पर काबू पा लिया है, तो अब जमीन तैयार है कि वहां बीज डाल दिया जाए, फसल बोने के लिए जमीन तैयार हो गई है। तो फिर वो علم کی کوئی ابتدائی چیز مجھے عطا فرما دیں گے کہ آپ یہ پڑھا کیجئے. اب اس سلسلے میں دو تین رویے ہوتے ہیں. اگر کوئی واقعی صاحب علم ہے, بڑے مقام پر ہے علم کے, یا یوں کہیے کہ اس کے پاس علم بہت ہے, تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ تلاوت کلام پاک کیا کیجئے, اس لیے کہ جب تلاوت کلام پاک انسان کرے گا کثرت کے ساتھ تو زمین خود بخود ہموار ہوتی چلی جائے گی, زمین خود بخود تیار ہوتی چلی جائے گی علم کی فصل بونے کے لیے, اور رب کی محبت جاگنے لگتی ہے قرآن پاک کثرت سے تلاوت کرنے سے. تو وہ بجائے اس کے کہ 20 چیزیں بتائے, یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو, اس کے پاس علم بے پناہ ہے. وہ اپنے علم کے زور پر جانتا ہے کہ مختصر لفظ میں نے کیسے ادا کرنے ہیں. تو وہ ایک کام کہتا کہ صاحب آپ قرآن پاک کثرت سے پڑھا کیجئے. اب صرف کلام پاک پڑھنے سے کیا کیا چیزیں حاصل ہو گئیں. ایک تو انسان رب سے گفتگو کرنے لگا, کیونکہ قرآن کا پڑھنا اللہ سے ہم کلام ہونے کے برابر سمجھا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے, محاورت نہیں ہے, کہ انسان رب سے گفتگو کرتا ہے, اس لیے کہ یہ اس کا کلام ہے, اس کا فرمان ہے. دوسرا, تلاوت کلام پاک جتنا کثرت سے انسان کرتا ہے رب تعالیٰ کی محبت دل میں جاگتی ہے. تیسرا, انسان برائیوں سے دور ہونے لگتا ہے, اس کے اندر پاکیزگی آنے لگتی ہے. تو ایک ہی چیز کر لینے سے بہت سی چیزیں تیار ہو گئیں. اس کے بعد وہ پھر آپ کو پڑھنے کو کچھ دے دے گا کہ تلاوت کلام پاک جاری رکھیے, آپ یہ پڑھ لیا کیجئے. وہ ہوتی بڑی مختصر سی چیز ہے جو بھی بتائے گا, کیونکہ انسان کتنا بڑا صاحب علم ہے, علم کے کس مقام پر فائز ہے, وہ اختصار سے اس کے اظہار ہو جاتا ہے. مختصر گفتگو صاحب علم ہی کر سکتا ہے, مجھ جیسا ناخواندہ انسان نہیں کر پاتا. مجھے اپنی بات آپ تک پہنچانے کے لیے آدھے گھنٹے کی تقریر چاہیے, لیکن جو بہت بڑا صاحب علم ہے کوئی, وہ ایک جملے میں پوری بات کہہ دے گا آپ کو. یہ علم کا کمال ہے. تو اس قصے میں نہ پڑھیے کہ چہرہ دکھایا گیا یا نہیں دکھایا گیا. صاحب علم ڈھونڈیے, اس کے پاس جا کے بیٹھ جائیے, جو وہ کہے آنکھیں بند کر کے کرنا شروع کر دیجئے. تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کے مرشد کو آپ کا چہرہ دکھائی دے, آپ کو دوسروں کے چہرے رب دکھانے لگے گا. کوہ قاف, پہاڑ اور قرآن پاک کی سورت قاف کا کوئی تعلق ہے؟ بات یہ ہے کہ یہاں شروع میں جب یہ نشست کی ابتدا ہوئی تھی تو حروف مقطعات پر ذکر یہاں کافی بات چیت ہوتی رہی ہے ہماری, اور میں نے عرض کیا تھا کہ وہ 14 ہیں اور ان حروف سے قرآن پاک کی آیات کی ابتدا ہوئی ہوئی ہے. اس کی ایک مصلحت ہے, ان سورتوں کو ان آیات کو پڑھنے سے بہت سی چیزیں حاصل ہوتی ہیں. پھر حروف مقطعات پر بڑی ڈیٹیل میں جب یہاں گفتگو ہوئی تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہر حرف 14 کے 14 کسی ایک پرٹیکولر چیز کو کمانڈ کرتے ہیں, اس کے حاکم ہیں, اس کے انچارج ہیں. اس حرف کو پڑھنے سے وہ کچھ حاصل ہوتا ہے. ये मैं नहीं बता पाया था क्योंकि उस पर पाबंदी है कि किस हरफ के पढ़ने से क्या हासिल होता है। जिन लोगों के इल्म में यह है कि ये हरूफ मक्तियात क्या क्या खेल खेल देते हैं और कायनात को चलाने में ये कहां कहां क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं, वो मुंह खोलने पर राजी नहीं होते इस एस्पेक्ट पे। वो अपने किसी शागिर्द को अगर कोई हरफ पढ़ने को बता भी देंगे तो उसकी पूरी तफसील में नहीं जाएंगे, इतना तो कह देंगे कि ये पढ़ लोगे तो ये हो जाएगा, लेकिन उसकी पूरी बैकग्राउंड एक्सप्लेन कभी नहीं करेंगे। तो ये हरूफ मक्तात में से है काफ। इसको न छेड़िए, ये संभाला नहीं जाएगा। अब ये किसी साहब ने, ये गालिबन रूहानियत की राह के मुसाफिर बनना चाह रहे हैं और जिन्नात से डर रहे हैं, कि हमने आपके लेक्चर में सुना है कि रूहानियत की राह की पहली स्टेज जिसमें इंसान को जिन्नात नजर आने लग जाते हैं, तो क्या इस राह का हर मुसाफिर स्टेज से गुजरना लाजमी है? हजूर आप डरिए नहीं, ये जिन्नात इंसान के ताबे होते हैं, तो जो आपका मातहत है वो आपको क्या कहेगा? ये तो हमने उनको अपने सर पे सवार किया हुआ है, वरना उन बेचारे जिन्नात की क्या मजाल है? साहिब इल्म के तो करीब से नहीं गुजरते, इतना खौफजदा होते हैं वो इनसे, इनके पास ही नहीं आते, भागते हैं, दूर भागते हैं। और अगर कोई बहुत पावरफुल साहिब इल्म है तो वैसे ही जल के भस्म हो जाएंगे उनके सामने आने से। तो जिन्नात क्या बहुत सी चीजें दिखाई देती हैं इस राह में, जब इंसान चलता है बहुत सी चीजें देखता है, क्योंकि इंसान जब इल्म के खास मकाम पर चला जाता है तो वहां जाके वो टाइम एंड स्पेस से बियॉन्ड होता है, वो वक्त और मकानियत का कैदी नहीं रहता, उसे आजाद हो जाता है। तो रब ताला उसे हजारों साल पहले और हजारों साल आइंदा आने वाले मामलात भी दिखा देता है अगर वो चाहता है तो, लेकिन दिखाता रब ही है। उस आदमी की अपनी कोई कुव्वत नहीं होती, इस गलतफहमी में ना पड़िए, ये सिर्फ और सिर्फ रब के ताबे होती हैं चीजें। तो जिन्नात से मत डरिए, अगर कोई कभी आपको नजर आ जाए तो मेरा भी सलाम अर्ज कर दें उसे और उससे हाथ वाथ मिलाइए। ये बहुत किताबों में इस सवाल का जवाब लिखा है, इस पे तकरीबन हर इस्लामी किताब में ये लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला के नाम पर जिन बच्चों के नाम होते हैं उनके साथ लिखे हुए नाम पर क्या किया जाना चाहिए। मामला अदब का है, तो जितना अदब ज्यादा करेगा इंसान उतना फल पा जाता है, तो अदब कर लीजिए उन नामों का। हज़रत अली करम अल्लाह वजहू के फरमुदात पर मबनी किताब नहजुल बलागा पढ़ने का दिल चाहे तो आपकी राय में किसका लिखा हुआ तर्जमा पढ़ना चाहिए? किसी साहब का लिखे पढ़ लीजिए, अगर फर्क होगा तो बहुत ही मामूली होगा, तर्जमा एक्सप्लेनेशंस में फर्क आ जाता है, क्योंकि हर शख्स अपनी जहनी इस्तेदाद के मुताबिक उसकी एक्सप्लेनेशन देगा आपको, तो एक्सप्लेनेशन ना पढ़िए उसकी, जिसे हम उर्फ आम में तफसीर कहते हैं, तर्जमा पढ़ लीजिए, वो उसमें फर्क नहीं होता। دوسرا سوال کیا کہ آپ کے نزدیک زندگی کی کیا تعریف ہے؟ یہ صرف ایک لفظ میں اس کی تعریف کی جا سکتی ہے، فقرہ نہیں، لفظ، وہ ہے تغیر. جب تک کہیں تغیر ہے وہ چیز زندہ ہے، اور جہاں اس میں ثبات آ گیا وہ موت ہے، صرف موت کو ثبات ہے. کسی نے سوال پوچھا ہے کہ اگر ایک نوجوان پڑھا لکھا انسان خودکشی کرنے کی کوشش کرے تو اس کے ساتھ کیا رویہ اپنایا جائے اگر وہ باوجود سمجھانے کے بھی باز نہ آئے. میرے خیال میں سمجھانا کسی بھی چیز کا کوئی حل نہیں ہے. یہ تو پرسنل ایگزامپل ہے جو اثر انداز ہوتی ہے انسان پر. اگر ہم خود رب پہ بے انداز بھروسہ رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح پیروکار ہیں، تو رب تعالیٰ ہمارے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا کر دے گا، خود ہی ہو جائیں گی پیدا وہ بغیر کسی ایفرٹ کے، کہ زندگی سے مایوس انسان اگر آپ کے پاس آیا تو آپ کی جسم سے نکلنے والی وائبریشنز اس پر خود بخود اثر انداز ہو جائیں گی، اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا. جیسے میں یہاں کئی بار میں نے ذکر کیا کہ کسی فقیر کو دیکھیے، وہ ویرانے میں ایک کٹیا میں بیٹھا ہوگا، ایسی کٹیا جس سے نہ بارش رکتی ہے نہ دھوپ پوری طرح رک پاتی ہے. سونے کے لیے اس کے پاس کوئی زیادہ اچھا بندوبست بھی نہیں ہے، کھانے کو پوری روٹی نہیں ہے، پہننے کو پوری طرح کپڑا نہیں ہے، لیکن وہ بے انداز خوش ہے. نہ صرف خوش ہے بلکہ بڑا ویلکمنگ ہے. تو جب انسان اس سے ملتا ہے تو سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ بھی تو انسان ہے، کس طرح خوش ہے اسی طرح. تو میرے پاس تو پھر بہت سی نعمتیں ہیں، اور میں ان کے باوجود مایوسی کی اس حد کو ہوں کہ میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں. تو اگر انسان خود اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالے ہوئے ہے جو ایک مسلمان کا ہے، تو اس سے ملنے والا انسان مایوسی سے خود بخود نکل آتا باہر. اس کے پاس دو منٹ بیٹھے گا، مایوسی خود بخود چلی جائے گی وہاں سے. یہ کبھی آپ کسی صاحب علم سے مل کے اندازہ لگائیے، کتنے ہی گرم موڈ میں ہوں آپ، اس سے ملیں گے وہ بے شک آپ سے کوئی ہنس کے بات نہ کرے، لیکن اس سے مل کر جب اٹھ کے جائیں گے تو بڑے خوش موڈ میں ہوں گے آپ. یہ اس کلام الہی کا اعجاز ہے جس کی تلاوت وہ کر رہا ہے. تو سمجھانا تو کوئی حل نہیں ہے. میں اگلی اتوار تک کے لیے اجازت لیتا ہوں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی بشرط زندگی آپ سے.